श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद चौदहवा अध्याय श्लोक संख्या 17-16। इति ताम वीर मारीचः कृपणाम बहुभाषिणीम् प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानं कश्मलम् इति अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: हे वीर विदुर, इस प्रकार दीन और प्रगल्भ बनी हुई काम के दोष से पीड़ित होने पर दिति को मरीचि के पुत्र ने उपयुक्त शब्दों में सांत्वना प्रदान की। तात्पर्य: जब पुरुष या स्त्री कामेच्छा से अभिभूत होती है तो उसे पाप पूर्ण प्रदूषण माना जाना चाहिए। कश्यप अपने आध्यात्मिक क्रियाकलाप में लगे हुए थे, किंतु उनमें अपनी पत्नी को, जो इस प्रकार पीड़ित थी, अस्वीकृत देने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। वे असंभव कहकर सशक्त शब्दों में उसके अनुनय को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु वे आत्मिक दृष्टि से उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने विदुर। विदुर यहाँ वीर के रूप में संबोधित किए गए हैं, क्योंकि श्री भगवान के भक्त की अपेक्षा कोई भी अन्य व्यक्ति आत्मनिग्रह में अधिक शक्तिशाली नहीं है। यह प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से ही अपनी पत्नी के साथ कामचर्या के लिए इच्छुक थे और वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल सांत्वनादायक शब्दों द्वारा उनको मना करने का प्रयत्न किया। अनुवाद को दोहराते हैं। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिति काम वासना से पीड़ित होकर अपने पति कश्यप मुनि के पास में आती है और पुत्र की इच्छा सामने रखती है। और इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कश्यप मुनि ने उपयुक्त शब्दों में दिति को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। यह तात्पर्य मिश्र प्रभुपाल जी बता रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, काम वासना से पीड़ित होता है या होती है तो इसे एक प्रदूषण मानना चाहिए, क्योंकि यह संसार में यही सबसे बड़ा प्रदूषण है। वास्तव में आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को ये काम वासना से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये भौतिक संसार से संग करने की वजह से ये काम वासना का जो प्रदूषण है वो उत्पन्न हो जाता है। और ये काम वासना जो है ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, जैसे स्वयं श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महाश्नव महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। कि हे अर्जुन, ये काम जो कि रजगुण से उत्पन्न होता है, यही जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है और इस काम से फिर क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो काम वासना व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इसलिए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। और इस प्रकार से विवेक बुद्धि नष्ट होने की वजह से फिर कामग्रस्त जीव जो है वो पाप करने में प्रेरित हो जाता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये समय ठीक नहीं था, फिर भी दिति कश्यप मुनि के पास आए और कश्यप मुनि, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, उनको सख्त शब्दों में इनकार नहीं कर पाए क्योंकि उनके भीतर वो आध्यात्मिक बल नहीं था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर ये शक्ति होती है। यहाँ पे विदुर को वीर शब्द से संबोधित किया गया है और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वीर इसलिए कहलाते हैं विदुर क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और क्योंकि वो ऐसे काम वासना को ना कह सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। लेकिन कश्यप मुनि बड़े ऋषि थे, फिर भी इनकार नहीं कर पाए। ये वीर वास्तव में कौन होता है? जो किसी युद्ध में जाता है और युद्ध में जाने से बहुत सारे शत्रुओं को हरा देता है और कभी अपना पीठ नहीं दिखाता और फिर अपने शत्रुओं को हरा कर फिर अपने घर में फिर से लौट कर आता है। तो इस संसार में जो युद्ध होते हैं इनमें विजय प्राप्त करना कठिन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो युद्ध हमारे लिए है वो बाहर का युद्ध नहीं है, वो अंदर का युद्ध है। हमारे इंद्रियों के प्रति जो हमें युद्ध करना है वो सबसे बड़ा कठिन और सबसे बड़ा युद्ध है। ये सारे संसार को भी हम जीत पाए लेकिन हमारे इंद्रियों को जीतना ये कठिन है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं ये संसार में, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और उन्होंने सारे पृथ्वी को भी जीत लिया है, लेकिन अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाने की वजह से वो किसी रानी या किसी और महिला के हाथों में एक कठपुतली बन गए हैं। इसलिए श्री श्री राधा गिरिधारी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। इसलिए इतने बड़े शूरवीर होने पर भी जब वो अपने किसी स्त्री के सामने आ जाते थे तो उनका शूरवीरता सब खत्म हो जाता था। तो इसके लिए कई इतिहास में उदाहरण पाए जाते हैं। आधुनिक इतिहास में भी हम देखते हैं कितने बड़े बड़े राजा महाराजा उनका पतन हो गया। जूलियस सीजर जो है यूरोप में इतने बड़े राजा हुए, सब देशों को उन्होंने जीत लिया, लेकिन क्लियोपेट्रा के सामने वो कुछ भी नहीं रहे। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे राजा महाराजाओं का वर्णन है, जैसे पुरुरवा राजा की कथा आती है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। इससे ये साबित हो जाता है कि पुरुष की क्या दशा हो जाती है जब वो इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता है। ये जो कथाएं पुरुष के लिए हैं, वैसे ही कथाएं स्त्री के लिए भी है। काम वासना चाहे पुरुष के लिए हो या स्त्री के लिए हो, तो दोनों के लिए शत्रु है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो पुरुरवा राजा का जो चरित्र है या उसका जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि राजा विवस्वान जो कि सूर्य देव है, उनका जन्म हुआ अदिति और कश्यप से, और इस प्रकार से राजा विवस्वान से सूर्यवंश आरंभ हुआ। बहुत लंबे समय तक विवस्वान को कोई पुत्र या संतान उत्पन्न नहीं हुए। तो बड़े चिंतित थे राजा विवस्वान। और इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि से उन्होंने निवेदन किया कि हमें कोई यज्ञ करना चाहिए जिससे कि हमें कोई पुत्र की उत्पत्ति हो। तो एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में जो पुरोहित थे उन्होंने एक गलती की। और गलती क्या थी कि राजा विवस्वान श्राद्धदेव की जो श्राद्धदेव उनके पुत्र का नाम था, राजा विवस्वान की जो पत्नी थी उन्होंने कहा हमें पुत्री चाहिए, हमें कन्या चाहिए। तो पुरोहित ने सुन लिया और कहा ठीक है, और यही इच्छा मन में रखते हुए उन्होंने स्वाहा कह डाला। तो इसलिए उस यज्ञ की वजह से पुत्र की बजाय पुत्री उत्पन्न हुई। तो उस समय विवस्वान बड़े चिंतित हो गए और वशिष्ठ मुनि से कहने लगे कि ये विपरीत परिणाम कैसे हो गया, हमने पुत्र की कामना की थी लेकिन यहाँ पुत्री हो गई, ये कैसे हो गया। तो वशिष्ठ मुनि ने थोड़ा बहुत उसमें गंभीर गहराई में गए सोचने के लिए कि क्या बात है, आखिर में समझ में आया कि क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पुरोहित की भूल थी, आपकी पत्नी की बात सुनकर उन्होंने विचार बदल दिए, इसलिए पुत्र की बजाय पुत्री हो गई। तो अब राजा विवस्वान कहने लगे अब क्या किया जाए, मुझे तो पुत्र चाहिए, आप कुछ कीजिए, वंश को बढ़ाना है आगे। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि ठीक है, धार्मिक राजा है, इनको वंश चलाना है। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से और फिर भगवान की कृपा से उनको ये वरदान मिला जिससे ये जो पुत्री थी जिनका नाम इला था वो पुत्र में बदल गई। और पुत्र में बदलने की वजह से फिर उनका नाम हुआ सुद्युम्न। अब राजा सुद्युम्न यहां पृथ्वी पर राज कर रहे थे और राज करते करते एक बार वो अपने साथियों के साथ शिकार करते करते अलग अलग वनों में से गुजर रहे थे। उस समय वो एक ऐसे वन में गए जहां शिवजी और पार्वती निवास कर रहे थे। और एक बार शिवजी ने ये घोषणा की थी बहुत पहले कि जो भी पुरुष ये वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। तो ये सुद्युम्न राजा और उनके जो साथी थे वो सब उस वन में आए, उनको ये पता नहीं था कि ऐसा घोषणा की है शिवजी ने। तो अचानक क्या देखते हैं कि अरे हम तो स्त्री बन गए हैं, बड़े दुखी हुए, दुखी होते होते वापस भी नहीं जा सकते, तो इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे। तो फिर से ये इला हो गई सुद्युम्न। तो इस प्रकार से घूमते घूमते वहां बुध नाम के व्यक्ति थे राजा, उन्होंने देखा। अब बुध राजा कौन थे, बुध थे सोम राजा के पुत्र, सोम यानी चंद्र, और चंद्र किसके पुत्र थे, वो है अत्रि मुनि के, और अत्रि मुनि किसके पुत्र थे, ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि ऋषि के आंखों के अश्रु से जल से उन्होंने अनुसुईया के गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न किए, सोम, दुर्वासा मुनि और दत्तात्रेय। ये कथा अलग अलग है, कभी कभी बताया जाता है कि सोम भगवान के मन से उत्पन्न हुए, कभी कभी बताया जाता है कि वो अत्रि ऋषि के आंखों के जल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से अलग अलग कल्पों में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग वर्णन है। लेकिन इससे ये भी हमें वैज्ञानिक जो हमारे हैं उनको यहां से बहुत ज्ञान मिल सकता है कि किस प्रकार से आंखों के जल से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, किस प्रकार से मनुष्य योनि से भी पेड़ योनि उत्पन्न हो सकती है, मनुष्य योनि से कीड़े की योनि उत्पन्न हो सकती है। ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं इनको भी बहुत कुछ सीखना है भागवत से। तो खैर जब सोम राजा उत्पन्न हुए तो बहुत शक्तिशाली थे, सारे ब्रह्मांड का राज उन्होंने कर लिया, इतने शक्तिशाली थे। और जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो घमंडी हो जाता है, और जब घमंडी हो जाता है जो काम वासना के ग्रस्त होकर फिर वो ऐसे कोई ना कोई कार्य कर बैठता है। तो इस प्रकार से सोम ने बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं
उनके पत्नी का अपहरण कर लिया, उनका भोग करना चाहा। और जब ये किया तो बृहस्पति बड़े गुस्से हुए, को बड़ा क्रोध आया और सारे देवता गण एक हुए। सोम भी देवता थे, लेकिन सोम राजा के विरुद्ध बड़ा युद्ध हुआ। अब बृहस्पति के पिता थे अंगिरा मुनि, और अंगिरा मुनि थे शिव जी के गुरु, तो इसलिए शिव जी भी बृहस्पति की ओर से लड़ाई करने लगे और बड़ा युद्ध हुआ। अब सोम भी देवता थे, लेकिन क्योंकि वो बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु थे उनके विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, इसलिए शुक्राचार्य और असुर जो थे वो सोम राजा के ओर से आके युद्ध करने लगे। इस प्रकार से फिर से देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देखिए कोई ना कोई कारण चाहिए, तो इस प्रकार से धुआं बड़ा युद्ध हुआ। वहां पर अंगिरा मुनि जाकर जाग गए ब्रह्मा जी के पास। अरे ये सब क्या हो रहा है, देखिए ये जो सोम ने क्या कर डाला है उसकी वजह से सारे ब्रह्मांड में युद्ध हो गया है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी आए, सोम को बहुत उन्होंने दंड दिया कि बड़े मूर्ख हो, तो क्या कर रहे हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी वजह से युद्ध हो रहा है, तुरंत रोक दो इसे। और इस प्रकार से सोम को मानना पड़ा और फिर तारा को वापस लाके बृहस्पति के पास दे दिया। तारा जो कि बृहस्पति की पत्नी थी, उस समय तारा गर्भवती हो गई थी। तो बृहस्पति ने कहा कि तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम मुझे छोड़कर वहां सोम के पास गई, अब तुरंत बच्चे को जन्म दे दो। तो वहां कोई डॉक्टर नहीं थे सीजेरियन करने के लिए, लेकिन तुरंत जन्म हो गया फिर बच्चे का। ऐसे भी ऊपरी लोक में हो सकता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि के कहने से ऐसे जन्म हो सकता है, जन्म हो जाए, हो सकता है जन्म। तो खैर बच्चे का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो बृहस्पति ने पूछा कि ये कौन है, किसका पुत्र है, ये मेरा पुत्र है कि सोम का पुत्र है। वो कहीं नहीं। बाद में फिर आके जब देवता आए उन्होंने कहा कि ये सोम का पुत्र है, तो सोम ने तुरंत से ले लिया पुत्र को। और इसलिए कहा उसने कि बच्चे ने खुद मां को कहा कि अरे मैं किसका पुत्र नहीं कह रही आप, जल्दी से कहो। तो इस प्रकार से मां ने कह डाला। तो सोम ने जल्दी से वो लड़के को ले लिया और वो लड़के का नाम हुआ बुध। बुध यानी बहुत बुद्धिमान, और वास्तव में बहुत बुद्धिमान भी था पुत्र। तो ये बुध राजा जो है जो कि सोम वंश से आए, वो सुद्युम्ना के पास आए जो कि इला बन के आई थी, जो सूर्यवंश से आई है यानी विवस्वान से। इस प्रकार से बुधा और इला का मिलन हुआ, और बुधा ने इला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जो इला ने स्वीकार किया, और इस प्रकार से सोम वंश और चंद और सूर्यवंश का मिलन हुआ। और इस प्रकार से उनके मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था पुरुरवा। ये पुरुरवा राजा एक और कौन है, चंद्र वंश और सूर्य वंश के मिलन इधर। दूसरी ओर वहां जब पुरुरवा राजा का जन्म हुआ तो वहां फिर से जब इला वापस गई तो उनके पिता ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, फिर से लड़की हो गई, कन्या हो गई। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने जाकर शिवजी से फिर से प्रार्थना की कि आपके श्राप की वजह से ये पुत्र से फिर से पुत्री बन गई, कन्या बन गई, तो कुछ कीजिए। तो शिवजी ने कहा कि मैं श्राप को पूरी तरह से तो उल्टा नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये एक महीना जो है कन्या रहेगी, एक महीना पुरुष, एक महीना स्त्री, एक महीना पुरुष। इस प्रकार से वो राज करने लगे। अभी कोई राजा एक महीना राजा हो, एक महीना रानी हो जाए तो कौन प्रजा संतुष्ट रहेगी। तो सारे प्रजा संतुष्ट नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं था। इसलिए फिर विवस्वान ने सोचा कि और कुछ करना चाहिए। तो विवस्वान ने और यज्ञ किए, और फिर उन यज्ञों से फिर राजा इक्ष्वाकु, राजा नृग, ऐसे महान महान जो राजा हैं, वो सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए। लेकिन ये बाद में हुआ, उसके पहले पुरुरवा राजा ने राज किया, फिर जो है इक्ष्वाकु, नृग, राजा इत्यादि आए, है ना। गीता में भी हम पढ़ते हैं ना, इमं विवस्वान योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, है ना। तो मनु ने इक्ष्वाकु को यानी विवस्वान वैवस्वत मनु ने ये मनु को हमारे इक्ष्वाकु राजा को उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से सूर्य वंश उस ओर चलते रहा, चंद्रवंश सोम से वहां चलते रहा और बीच में पुरुरव राजा आए। तो ये पुरुरव राजा वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी राजा थे, सारे पृथ्वीलोक को सारे भूमंडल के ऊपर राज कर रहे थे और इनका गुणगान जो है स्वर्गलोक गंधर्वलोक में भी किया जाता था, इतने यशस्वी थे। और एक बार ऐसे हुआ कि नारद जी ये राजा पुरुरवा का गुणगान कर रहे थे इंद्रलोक में, इंद्र के दरबार में, और उस समय अप्सरा उर्वशी वहां पे उपस्थित थी और उर्वशी को एक शाप दिया गया था मित्र और वरुण द्वारा कि आपके भी मनुष्यों की तरह आपकी आदत हो जाएगी, आपको भी यहां पृथ्वीलोक में जाना पड़ेगा। उस समय जब उर्वशी ने ये सुना पुरुरवा राजा के गुणगान, तो हृदय में आकर्षण पैदा हुआ और वो चाहे कि मैं भी पुरुरवा के साथ में जाकर संग करूं। तो नीचे पृथ्वीलोक पर आई और पुरुरवा राजा के दरबार में गई और अपना प्रस्ताव सामने रखा। पुरुरवा राजा भी बहुत आकर्षित हो गए उर्वशी से और वो प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन उर्वशी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ में संग करूंगी लंबे समय तक, लेकिन मैं तीन शर्त सामने रखती हूं। पहला शर्त है कि मैं शुद्ध घी के भोजन में खाऊंगी और कोई भोजन मुझे नहीं खिलाना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि स्वर्ग लोक में ऐसे ही खाते हैं, शुद्ध घी के पदार्थ ही खाते हैं, वहां पर कोई अंडा मच्छी नहीं होता है। तो यह है स्वर्गलोक में जो तरीका होता है, सत्वगुण का भोजन शुद्ध घी का। तो पुरुरवा ने कहा ठीक है मंजूर। दूसरा शर्त है कि मेरे पास में ये दो पशु हैं, लैम्स को क्या कहते हैं, शिप मेंढे, पास दो मेंढे हैं, बकरी नहीं भेड़िया है, ये दो भेड़ियों का देखभाल करना चाहिए, ये मेरे पुत्र के समान है और ये मेरे प्राण से भी ज्यादा मेरे प्रिय हैं भेड़िए, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है मंजूर, सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं तो दो भेड़ियों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे, सोचा ठीक है करेंगे। और तीसरी बात, कभी भी मैं आपको रात के अलावा नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहती हूँ, केवल यहाँ पर जब मेरे साथ में है उस वक्त, अन्यथा मैं नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहती हूँ। अगर ये तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त आप तोड़ते हैं तो मैं आपका संग छोड़कर मैं चली जाऊंगी। तो इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक जो पुरुरवा राजा हैं वो भोग करते रहे, पता नहीं चला कि दिन कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, रात आ रहे हैं जा रहे हैं, सालों के ऊपर साल बीत गए और राजा पुरुरवा जो है भोग करते गए, सोच लगे कि यही जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। और ऐसे जब चल रहा था तो उधर इंद्र के दरबार में इंद्र सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उर्वशी नहीं है, अब उर्वशी तो इंद्र के दरबार के आभूषण है, अब उर्वशी नहीं रहेंगी तो इंद्र के दरबार में क्या अच्छा रहेगा। तो इंद्र ने सोचा, गंधर्वों को कहा कि जाकर उर्वशी को वापस ले आओ। अब कैसे ले आए उर्वशी को, तो उन्होंने तरकीब सोची कि रात को आकर गंधर्वों ने वो जो दो भेड़िया थी वो चोरी करके वो ले गए। अब चोरी करके जब ले जा रही थी तो उर्वशी उठी, देखी अरे मेरे भेड़ियों को ले जा रहे हैं, और बहुत ही कठोर शब्दों में राजा पुरुरवा को कोई कठोर शब्दों में कहने लगी कि आप तो इतने बड़े राजा हो, पुरुष हो, लेकिन नाम के लिए पुरुष हो, मेरे दो भेड़ियों को भी आप बचा नहीं पा रहे हो। तो किसी भी पुरुष को ऐसे कहा जाए तो तीर के समान हृदय में लगता है, किसी पुरुष के मर्दानगी के ऊपर ही कोई ये रखा जाए, और वो तो बिल्कुल शारीरिक भावना में थे, अपने आप को बहुत मर्द समझ रहे थे, तो इतना उनको बुरा लगा कि ये भेड़ियों के पीछे भागने लगे। और भागे तो ये नहीं देखा कि मैंने कपड़े क्या पहने नहीं पहने, नग्न अवस्था में जैसे थे वैसे ही वो भागे और लेकर आए। लेकिन उस समय गंधर्वों ने प्रकाश फैल दिया और नग्न अवस्था में वो दिखाई पड़े, तो तुरंत उर्वशी वहां से अदृश्य होकर चली गई। तो जब ये पता चला राजा पुरुरवा को कि उर्वशी अब मेरे साथ में नहीं है, तो इतना शोक करने लगे, इतना शोक करने लगे कि प्राय पागल बन गए वो। और पागल की तरह सारे जगत में इधर उधर इधर उधर भटकने लगे उर्वशी की खोज में। सालों के ऊपर साल बीत गए ऐसे खोजते खोजते उर्वशी को, जंगलों में इधर पहाड़ों में इधर उधर घूमने लगे। तो देखिए सारे इतने बड़े यशस्वी राजा जिनका गुणगान स्वर्ग लोक में भी हो रहा है, ऊपर के लोकों में भी जहां हो रहा है, ऐसे राजा, सबसे शक्तिशाली राजा जिनका नाम सुनकर असुर भी कांपते थे, ऐसे राजा की क्या दशा हो गई, और केवल काम वासना की वजह से। देखिए इतना बड़ा शूर वीर, लेकिन अभी क्या हालत हो गई उसकी। और एक दिन फिर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी को उन्होंने देखा अपने 5 साथियों के साथ में, और प्रार्थना करने लगे, उर्वशी के पैरों पर पड़ने लगे, मेरा संग नहीं छोड़ो, मेरे साथ में रहो। देखिए क्या दशा हो जाती है एक राजा की, इतने बड़ा राजा, लेकिन अभी काम वासना की वजह से संभोग के लिए प्रार्थना कर रहा है उर्वशी से कि छोड़ो मत, और रोने लगा बिल्कुल राजा, कहने लगा कि मैं अभी प्राण त्याग दूंगा अगर तुम मेरे से चले जाओगे तो। मेरा जो ये सुंदर शरीर है अभी वो केवल ये जो वल्चर को क्या कहते हैं, वल्चर्स जो शरीर को खा जाते हैं, शव को, गिदड़ नहीं, गिद्ध, गिद्ध के लिए वो भोजन हो जाएंगे, इसलिए आप मेरे पास फिर से आ जाओ। तो फिर उर्वशी ने कहा कि मैं एक रात के लिए आपके संग में आऊंगी, साल में, इसके ज्यादा नहीं। तो वो भी मंजूर कर लिया। देखो आदमी की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है काम वासना से, क्या हालत हो जाती है। तो मंजूर कर लिया। फिर इसके बाद में भी उर्वशी ने कहा कि गंधर्व लोग गंधर्वों की को प्रसन्न करो, और फिर वो तुम्हारे सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। उस समय गंधर्व लोग प्रसन्न हुए जब पुरवा राजा ने प्रार्थना की। उन्होंने और एक अप्सरा उनके पास में रख दी जो उर्वशी के समान बिल्कुल डुप्लीकेट जैसी थी। तो थोड़े समय बाद में पुरवा को समझ में आया कि ये उर्वशी नहीं है, तो तुरंत उर्वशी को छोड़कर वापस चले गए और अपने चिंतन में बैठे शोक कर रहे थे, हाथ ऐसे सिर में रखते हुए शोक करते थे, उर्वशी के बारे में सोचते थे कि क्या मेरा जीवन हो गया है बिल्कुल, यानी कि जहां राजा थे और अब क्या उनकी दशा। और उस समय भागवत में बताया जाता है कि सत्ययुग का परिवर्तन हो गया त्रेता युग में, ठीक उसी समय। तो ये सत्ययुग की बात है। और उस समय उनके हृदय में 3 वेद और जो अन्य कर्म कांड के जो यज्ञ हैं वो प्रकट हुए उनके हृदय में। ये बताया जाता है कि सत्ययुग में एक ही वेद था, अथर्ववेद। कभी कभी ये बताया जाता है कि वो यजुर्वेद है, लेकिन खैर चाहे वो अथर्ववेद हो या यजुर्वेद हो, वेद एक ही था और मंत्र एक ही था, और वो है ओमकार, प्रणव ओमकार, और कोई मंत्र नहीं थे उस समय, और मंत्रों का की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, और वर्ण एक ही था, हंस। वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे, केवल हंस। और वहां पे पूजनीय आराध्य जो देवता हैं केवल नारायण। उस सत्ययुग में कोई देवी देवताओं की उपासना का प्रश्न ही नहीं था, ऐसे शास्त्र भी नहीं थे जिनमें देवी देवताओं की उपासना का वर्णन किया गया था। वो तो त्रेता युग से चालू हुआ और यहां राजा पुरुरवा से चालू हुआ। इस मनवंतर में राजा पुरुरवा की वजह से इस त्रेता युग में चालू हुआ। तो उन्होंने ये कर्मकांड की योजना, ये जो कर्मकांड की पद्धति का आरंभ किया। तो कर्मकांड इस मनवंतर में राजा पुरुरवा से आरंभ हुआ। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो उर्वशी के लोक में जाना चाहते थे, है ना? हम देखते हैं कर्मकांड क्यों करते हैं लोग, याम इमां पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यद्वस्तिथिवादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा। तो स्वर्ग की प्राप्ति या ऊपर के लोगों की प्राप्ति के लिए लोग कर्मकांड करते हैं ना, तो इसकी शुरुआत पुरुरवा राजा ने की। उन्होंने क्या किया, फिर से वो जगह जहां वो अग्निस्थली स्त्री थी जिन्होंने जिनको गंधर्व लोग गंधर्वों ने दिया था, ज्ञान उनको हो गया, हृदय से वो प्रेरित हुए क्योंकि त्रेता युग आरंभ हो गया था और त्रेता युग में कर्मकांड आरंभ हो गया। तो उन्होंने यज्ञ किया और अग्नि वहां से आई, इसलिए अग्नि को पुरुरव राजा का पुत्र माना जाता है। ये कर्मकांड अग्नि जो है, तो ये अग्नि करके ये जो यज्ञ करके फिर पुरुरव राजा वो गंधर्व लोक की प्राप्ति कर पाए और वहां जाकर उन्होंने उर्वशी का संग किया। इस प्रकार से कर्मकांड शुरू हुआ और इस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी की। अभी देखिए ये इस कहानी इस भागवत में क्यों बताई गई है। भागवत तो परमहंस संहिता है, शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं राजा ऐसे भाग रहा है, ऐसे दुर्दशा राजा की, और ऐसे ऐसी चीजें बताई जाती है जो भक्तों को सुनने की क्या आवश्यकता है। हम सुनते हैं, भक्तों को शुद्ध कृष्ण कथा सुननी चाहिए, लेकिन ये कथा सुनने से हमें वो चेतावनी मिलती है, हम होशियार रहते हैं कि यहाँ संसार में रहते हुए क्या खतरा है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे अपने बुद्धि को खोकर ऐसे उनकी दशा हो जाती है, तो साधारण हमारे व्यक्तियों की बात ही दूर है। और फिर इतना ही नहीं, इसके बाद में पुरुरव राजा और ऐसे राजा ने जो पछताया और पछताने के बाद जो सही रास्ते पे आए उसका वर्णन भी भागवत में दिया जाता है। तो ये पुरुरव राजा का जो वर्णन है वो 9वें स्कंद में आता है, लेकिन जब वो पछताने लगे तो उसका वर्णन 11वें स्कंद में है। और ये कि कौन कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, उद्धव गीता में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उस उपदेश को भगवद गीता कहते हैं, उसी प्रकार से भागवत के 11वें स्कंद में जो उपदेश श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया, बहुत लंबा उपदेश है, गीता से भी लंबा उपदेश है, उसको उद्धव गीता कहते हैं। तो इस उद्धव गीता में के एक हिस्से में भगवान श्री कृष्ण अयल गीत ये कहते हैं, पुरुरव का और एक नाम था अयल राजा, तो वे अयल गीत कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि किस प्रकार से काम वासना ये संसार में हमारा बड़ा शत्रु है। और फिर राजा पुरुरव की बात कहते हैं कि राजा पुरुरव जो है इस प्रकार से उर्वशी के पीछे भागते थे और कैसे कर्म कांड करके वो गंधर्व लोक तक पहुंचे, और उसके बाद में उनको पछतावा आया और पछताने के बाद में उन्होंने ये गीत गाया। जैसे संसार में भी देखते हैं ना, वो फिल्मों में भी दिखाते हैं, वो पछताने के बाद में सोचे मैं क्यों इसके पास में चला गया, है ना, मेरे पास ऐसे ही दुख हुआ। लेकिन क्या है कि संसार में जब लोग ऐसे शोक करते हैं, पछताते हैं, फिर से वही बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पुरुरव राजा इतने महान राजा थे, वे संस्कृति थी, संस्कार थे, इसलिए वो वैराग्य की भावना उनमें आ गई। जैसे अवंती ब्राह्मण की प्रार्थना, पिंगला वेश्या की प्रार्थना, ऐसे कई भागवत में प्रार्थनाएं पढ़ते हैं जो बहुत सारा पाप करने के बाद में पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, ऐसे गीत गाते हैं। और ऐसे गीत गाने से ऐसे वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है कि फिर ऐसे कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ एल गीत में हम एल गीत पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं कि राजा पुरुरव क्या कह रहे हैं। कई श्लोकों में है यह एल गीत। राजा एल ने कहा, हाय मेरे मोह के विस्तार को तो देखो, यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही न रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। कृपया ध्यान से सुनिएगा, हम सब के लिए है ये, राजा एल कह रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारे हृदय की बात कह रहे हैं। इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी देख नहीं सका। हाय मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। हाय यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुट मणि माना जाता हूँ, किंतु देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का खिलौना जैसा पशु बना दिया है। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया मानो मैं कोई घास की तुच्छ पत्ती हो। फिर भी मैं नग्न तथा लज्जा रहित पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। कहाँ है मेरा तथा कथित अत्यधिक प्रभाव, बल तथा स्वामित्व? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलकती झाड़ती है। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग से क्या लाभ? इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ? धिक्कार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने यह भी नहीं जाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ। यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा मानो मैं कोई बैल या गधा हूँ। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बराबर बारंबार उठती रही और कभी तृप्त तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी बुझाई नहीं जा सकती, जो भौतिक अनुभूति के परे हैं और आत्मा राम मुनियों के स्वामी हैं, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वेश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है भला और कौन बचा सकता है? क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद बनने दिया और क्योंकि मैंने इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन का महान मोह मिटा नहीं। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि उर्वशी ने बहुत प्रचार किया। जब इस प्रकार राजा प्रार्थना करने लगे कि मेरे पास लौट कर आओ, उस समय उर्वशी ने बहुत प्रचार किया, देखो इस प्रकार से मेरे संग में संबंध जोड़ने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, चले जाओ वापस। लेकिन नहीं माना, इसलिए यहाँ पर वो शोक कर रहे हैं कि मैंने उर्वशी को बात को भी ठुकरा दिया। भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ जबकि मैं स्वयं अपने असली आध्यात्मिक स्वभाव से अपरिचित हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूँ जो निर्दोष रस्सी के भ्रमवश सर्प समझ बैठा हूँ। आखिर यह दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ? मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंधि तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप है क्या? वे माया और मोह द्वारा उत्पन्न छन आवरण ही तो है। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता है कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, अथवा यह चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते तथा शियरों की है जो अंततो गत्वा इसका भक्षण करेंगे? क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख के साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते तथा इसकी सहायता करते हैं? फिर भी जब यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है, फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसी कैसी सुघड़ नाक है, कैसे इसकी और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। सामान्य कीड़ों मकोड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र तथा पीप से बने हुए भौतिक शरीर को भोग करना चाहते हैं। इतने पर भी जो व्यक्ति सिद्धांत रूप में शरीर के वास्तविक स्वभाव को जानता है, उसे कभी भी स्त्रियों का या स्त्रियों के लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषयों के संपर्क अनिवार्य रूप में मन को चलायमान करता है, क्योंकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता जो न तो देखी गई है न सुनी गई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है, स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों के खुल पर संगति न करने दें। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान है वे मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं रख सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। इस प्रकार से एल गीत समाप्त होता है। तो राजा एल की ये प्रार्थना है, अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने क्या किया। तो इस प्रकार से यहाँ पुरुरव राजा स्त्री के संग को धिक्कार रहे हैं। उसी प्रकार स्त्री को जो है पुरुष के संग से भी ऐसे ही होशियार रहना चाहिए। कपिलदेव तीसरे स्कंद में दोनों को सावधान कराते हैं, पुरुष को भी और स्त्री को भी। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं कि जहाँ ये स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ स्त्री को पुरुष पढ़ना चाहिए, ताकि दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि भौतिक शरीर दोनों का है, भौतिक शरीर से आसक्ति दोनों का है। इसलिए हम देखते हैं कि भौतिक काम वासना की वजह से आदमी की क्या दशा हो जाती है, और केवल भक्त ही है जो ऐसे वेग को वश में कर सकता है। जैसे महान ऋषियों ने कहा, हम तो चाहते थे बहुत और कहानियां सुनाने के लिए, लेकिन अभी समय हो चुका है। ये एक कहानी हमने सुनाई कि जिस प्रकार से यहाँ तात्पर्य में बताया जाता है कि कश्यप मुनि इनकार नहीं कर पाए, और जिन व्यक्तियों ने नहीं कर पाए शास्त्रों में, उन लोगों में पुरुरवा राजा हैं, फिर राजा ययाति हैं। हम उसकी भी कथा सुनाना चाहते थे और उनकी भी कथा सुनाना चाहते थे जो भक्त हैं, जिन्हों जो इनकार कर पाए, जैसे मार्कंडेय ऋषि, नर नारायण ऋषि, हरिदास ठाकुर, ऐसे लोगों का की कथा अगर हम सुनेंगे भागवत में, हरिदास ठाकुर की कथा चैतन्य चरितामृत में, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से जो चीज भौतिक संसार में असंभव है वो केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से आसानी से संभव हो सकता है। इसलिए हमारे लिए इस संसार में एक ही उपाय है, वो है भगवान की कृपा याचना करना, भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेना। जो इस समय ये काम वासने से बच सकता है कलयुग में, तो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और वो तब हो सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भक्तों का संग करें, और भक्तों के संग में रहकर वैष्णव के साथ में कोई अपराध न करें। जो बड़े से बड़े तपस्वी रहे हैं, वैष्णव अपराध की वजह से भगवान ने वो संरक्षण उनसे खींच लिया है, जिसकी वजह से उनका पतन हो गया है। इसलिए हमें वैष्णवों के प्रति बहुत प्रेम सम्मान से रहना चाहिए, वैष्णव का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर भी हम कोई इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकते, फिर भी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करके हमारे इंद्रियों को वश में करा पाएंगे। लेकिन अगर भी अपने प्रयास से हम कर पाए इंद्रियों को वश में, लेकिन हम वैष्णवों के संग में रहना नहीं जानते हैं, तो भगवान वो हमसे छीन लेंगे। इसलिए नम्रता से वैष्णवों के संग में रहना, हमारे हरि नाम का उच्चारण अच्छे ढंग से करना और भागवत गीता में हमारा चित्त जो है हमेशा मग्न रखना, ऐसे करेंगे तो हम इस भौतिक संसार के जो भी कष्ट हैं या जो भी काम वासनाएं हैं उनसे उनका पार करके हम भगवान के धाम में लौट कर जा सकते हैं। क्षमा चाहते हैं, हिंदी अच्छी तरह से न पढ़ने की वजह से एल गीत का मजा उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि संदेश अब तक ने सुन लिया है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? गौतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहनललिता श्रीविशाखान्वितां च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 Oh.